सूरत बलत 20 आयतें हैं, मक्की सूरत, चार टॉपिक हैं। आयत 1 से 4, दुनिया मशक्क़त की जगह, कबत मेहनत करो इधर। फिर असहाबुल मैमना में दाखिल हो गए। 5 से 10, 5 to 10, इंसान के सामने दो रास्ते हैं, बखील बन जाओ या फयाज बन जाओ, अल्लाह के रास्ते में दो या ना दो। आयत 11 से 18, समाजी अदलो इंसाफ एक दुशगवार घाटी है, यानी इंसानों में जीना कोई आसान काम नहीं है। आयत 19 से 20, असहाबुल मैमना और असहाबुल मशमा का मुख्तलिफ इंजाम। सूरत का थीम यही है कि दो रास्तों में से जो मर्ज़ी चूज़ कर लो, अल्लाह ने तुम्हें अब दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, जिस पे चलोगे वहीं पहुंचोगे। अब तो ऐसे लगता है हुज्जतें तमाम हो रही हैं पूरे कुरान के बाद, अब बस आप कुछ नहीं कहना। आप देख रहे हैं अभी तक पूरे पारे में कोई हुक्म नहीं आया, डूज़ या डोंट में कुछ नहीं आता कि आप अपनी अक़ल से पूछो कि मुझे किधर जाना है, और अल्लाह करे कि हमें समझ आ जाए कि हमने किधर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अक़्सिमु बिहाज़ल बलद वा अंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद। नहीं, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, मक्का की कसम है, और हाल ये है कि नबी, इस शहर में तुमको हलाल कर लिया गया। यकीन करें, अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत होना तो हमें साथ पे रो पड़े। सब ने आपकी इज़्ज़त को हलाल किया हुआ, जो दिल करता है आपको कहते हैं काहिन, मजनू, दीवाना। आज भी यकीन कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा और अल्लाह के नबी को लोगों ने हलाल किया हुआ है। जो दिल करता है, मुंह में आता है, वो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोल देते हैं। और कसम खाता हूँ बाप की और इस औलाद की जो इससे पैदा हुई, दर हकीकत हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया। ये आरामगाह नहीं है, आरामगाह वो होगी, कितनी है वो आप देखिए कि सारी ज़िंदगी एक इंसान भाग दौड़ करता है, जाना किधर है एंड पे, एक इंसान ने किस ठिकाने पे जाना है। एक पंजाबी का शेर मेरे नज़रों से गुजरा कुछ दिन पहले, तो मुझे अच्छा लगा। यानी बात सच है, चाहे अगर आज हम समझें कि ना समझें, लेकिन जितना ज़्यादा अगर आपको मुझे इस चीज़ का यकीन हो जाएगा ना कि इस दुनिया में जितना कमा लें, खा लें, पी लें, पहन लें, ओढ़ लें, इंजाम वही है जो हम भूले हुए हैं अक्सर, इल्ला माशाल्लाह। कुछ इस तरह का शेर था कि दो गज जगह ही तो मिलनी थी, एवं यानी दौड़ लाई, मिलनी तो कब्र की जगह ही थी, वो भी नसीब वालों को मिलती है। तो बात यह है कि आप और मैं आज अपने लिए सोचें कि कल जन्नत में कितनी जगह चाहिए, वहाँ क्या। ये पंजाबी का शेर सुना देती हूँ, आप में से कुछ लोग खुश हो जाएंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दो गज़ रकबा फुट दा कतबा, कब्र दो गज़ लंबी, ऊपर जो कतबा पीछे लगता है वो एक फुट होता है। एवं यानी दौड़ उड़ाई, किधर जाके मरे। ज़रूरत है इस बात की कि आज सोच लें, आखिर जाना तो हमने उधर ही है ना। क्या इसने ये समझ रखा है कि इस पर कोई काबू ना पा सकेगा। कहते हैं कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया, फ़ख्र दौलत कोठियाँ कितनी और घर कितने और गाड़ियाँ कितनी, तुम क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हें को बेचने जाए बाजार में तो कितने के बिकते हो। तुम्हारी चीज़ों के साथ तो तुम्हारी इज्जत है, जब ये हटेंगी किसी रिश्तेदार ने सलाम भी नहीं करना। बस दफ़ा यही होता है, हम अपनी बेकार चीज़ों को कीमती कर लेते हैं दौलत के रंग से। अयक्सबुल्लम यरहू अहद अलम नजल लहू ऐनैन, क्या वो ये समझता है कि किसी ने इसको देखा नहीं, क्या हमने इसको दो आँखें और एक ज़ुबान और दो होंठ नहीं दिए। देखिए बॉडी ऑर्गन्स की बात हो रही है, यानी इन चीज़ों का सही इस्तेमाल करो। हमारी आँखें क्या देखती हैं, हाथ क्या छूते हैं, कान क्या सुनते हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं, कल हिसाब लेगा। गलत चीज़ों से बास करो अपनी आँखों को, गलत चीज़ें मत देखो, गलत रस्तों पर मत जाओ। ये अल्लाह की शान है जो उसने हमें दे दिया, अब इसको मिसयूज़ ना करो, इसका सही इस्तेमाल करो। और दोनों नुमाएँ रास्ते इनको दिखा नहीं दिए, क्या अच्छा इस्तेमाल करो या बुरा। मगर इसने दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की हिम्मत ना की, और तुम क्या जानो कि वो दुश्वार घाटी क्या है। किसी गर्दन को ग़ुलामी से छुड़ाना, या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाक नशीन मिस्कीन को खाना खिलाना, फिर इसके साथ ये, यदि इतनी नेकियां कर लो फिर भी ना रुको अपने ऊपर, इसके बाद ये कि कान मिनल्लज़ीना आमनु वतवासु बिस्सब्र वतवासु बिलमरहमा। आदमी उन लोगों में शामिल हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और खलके खुदा पर रहम की तलकीन की। बहुत सारे लोग शुरू की नेकियां कर लेते हैं, लेकिन ये जो तवासी बिल हक तवासी बिल सब्र है ना, इस तक तो हम पहुँचते ही नहीं और ज़िंदगी चली जाती है। बहुत सारे लोगों को ये पता है दीन के नमाज रोज़ा हज ज़कात, लेकिन दीन इन सब चीज़ों के बाद आपको मुझे सिखाता क्या, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अल्लाह ताला हमें उनमें कर दे जिनको ये बात समझ आ गई। فرمایا یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، اور ان پر آگ چھائی ہوگی۔ منہ سادہ، ایسے لگتا ہے جیسے چیمبر میں بند کر دیا جائے اور نیچے سے آگ کھول دی جائے۔ اللہ نہ کرے کبھی گیس کا سلنڈر پھٹے تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ مجرنا من النار۔ سورت شمس، 15 آیتیں ہیں مکی سورت، 3 ٹاپک ہیں۔ آیت 1 سے 8 میں کائنات کی عظیم نشانیوں اور ضمیر سے قیامت کو پہچانو۔ آیت 9 سے 10 میں انسان کی فلاح کا دار و مدار تقوی اور تزکیہ نفس پر ہے، تو ضمیر کی آواز کو دباؤ نہیں بلکہ اس کو سنو۔ آیت 11 سے 15، 11 to 15، سمود کی طرح طغیانی نہ کرو اور بغاوت نہ کرو۔ پوری صورت کیا ہے؟ کانشیس کو ابھارو، انسانی ضمیر کو کھول رہا ہے کہ ذرا سوچو بیٹھ کے کہ اللہ نے تمہیں جو دنیا میں موقع دیا اس سے فائدہ اٹھا لو۔ مکہ کے دوسرے دور میں شروع ہوئی جب مخالفت عروج پہ تھی، ادھر سے مخالفت تھی اور ادھر سے خوبصورت آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی گئی۔ ہر بندے کے اندر اچھی بات کو سمجھنے کا بھی ٹیلنٹ موجود ہے اور بری کا بھی۔ اب یہ ہے کہ آپ کس کو ابھارتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ کرنا کیا ہے؟ فلاح پانے کی تیاری کرنی ہے۔ پھر دیکھیں سیلف کنٹرول والی صورت ہے، 4 دن کی دنیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، وہاں جا کر تمہیں من موجیاں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کذب سمود بتغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اسے جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت شخص بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ کے نبی کے قتل کی کوششیں مکہ والے کر رہے تھے، کہا دیکھو صالح کا بھی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، آخر کار ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیبندے خاک کر دیا، یعنی زمین میں ڈال دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف تک نہیں تھا۔ یہ بھی آیت قابل غور ہے۔ غلط کام کرنا اور یہ سوچنا کہ میری اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بدبختی کا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم غلط کام کریں بھی نہ، اور اگر کبھی ہو جائے تو ہم اس کو اپنے لیے ہلاکت سمجھیں۔ سورت لیل، 21 آیتیں، 5 ٹاپک ہیں مکی سورت۔ آیت 1 سے 4 میں کائنات کی گواہی ہے کہ اچھے اور برے عمل کوششوں کے مطابق نتائج نکلیں گے۔ آیت 5 to 7، متقی افراد کیسے ہوتے ہیں؟ لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آیت 8 سے 11، برے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ شقی، بدبخت۔ اور آیت 12 سے 13، اللہ ہدایت کا اہتمام کرتا ہے اور جزا سزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور 14 سے 21، 14 سے 21، دونوں کے مختلف انجام ہیں۔ مال دے کر اللہ کے راستے میں تزکیہ نفس کر لو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور مرکزی مضمون ہے کہ ہر بندہ مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے، ان نسا یکم لشتا، تو جو آج کوششیں ہیں کل وہی نتائج ہوں گے۔ 4th یا 5th سال میں مکہ کے دور میں نازل ہوئی، جس میں مکہ والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ جواب کیا ہے؟ اس پہ غور کیجئے گا، ان نسائکم لشتا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی کچھ کی آخرت بنانے والی ہیں، کچھ کی دنیا بنانے والی، کچھ کی اللہ کو راضی کرنے والی، کچھ کی شیطان کو خوش کرنے والی۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ کتنا آسان ہے مال دینا، جان دینا مشکل ہے، وقت دینا مشکل ہے، ذات دینا مشکل ہے۔ تو رمضان کی ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں अपने माल को मज़ीद पाक करें। आप देखेंगे कि इससे आपको सुकून भी मिलता है, और पता नहीं क्या मुसीबतें हमारे सर पे हों, क्या हादसात होने हैं, और हमारे इस माल के निकालने से अल्लाह ताला उसको हमारे से दूर कर दे। वम बखील वस्तगना, जिसने बुखल किया और अपने रब से बेनियाजी बरती। बुखल क्या? बखीली, अल्लाह के लिए नहीं निकलता। और बेनियाजी क्या? कोई ज़रूरत नहीं। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और भलाई को झुटलाया। इसको हम सख्त रास्ते की तरफ सहूलत देंगे। और रह गया माल, तो वह माँ युगनी अनहू माल हुई ज़्यादा रद्दा, इसका माल आखिर इसके किस रोज़ काम आएगा जबकि वो हलाक हो जाएगा। क्या होगा? कफन खरीदेंगे उसके माल से, चारपाई खरीद लेंगे बड़ी सी अच्छी सी खूबसूरत सी, कि डेड बॉडी को बहुत आराम दे चारपाई पे रखना है। कभी सोचा जाए, जो माल हम संभाल के रखते हैं वो किसके काम आएगा? हमारे नहीं आता। हदीस में आता है कि यकूल लब्दू माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसका माल तो सिर्फ तीन है। खा लिया, ख़त्म, गंदगी बन के निकल गया। पहन लिया, चिथड़े बन गया, अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वरना बाकी तो का वो रस्सा कह ले जाएंगे सब, बाद में लड़ेंगे, बल्कि पता नहीं क्या कुछ होगा। तो अकलमंद वो है जो अल्लाह को दे। किसी ने कहा कि औलाद नहीं है हमारी, तो आप फिर किसको दें? भांजों को, भतीजों को? और इस तरह से कोई क्वेश्चन था। तो उस दिन मैंने इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि हमारे माशरे में अब इतनी जहालत है कि चलो जीते जीते नहीं, मरते हुए भी हमें भांजे भतीजे और ख़ानदान वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर भी अल्लाह के नाम पे नहीं देना चाहते। और सवाल भी कुछ इस किस्म का था कि वो तो पहले ही बहुत खाते पीते हैं, तो फिर उनको ही देंगे ना हम। तो मैंने कहा, सिस्टर आपके दिन में कुछ और नहीं आया? कहती, क्या? मैंने कहा, आप इसको अपने हाथ से किसी सदका जारिया में लगाएं। मैंने उनके एक तो ऑप्शंस बताएं कि स्कूल में और दीन के कामों में। कहती, मेरा तो आज तक कभी इधर जहन ही नहीं गया था। मैं और मेरे भी ये मियाँ तो हमेशा हम यही बैठ के सोचते रहते हैं, हम मर जाएंगे, हाय हमारे माल का क्या होगा, हम तो जान छुड़ाना चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इससे अच्छा क्या होगा? सोच ही नहीं है, क्योंकि इरादा ही नहीं है, नीयत नहीं है। तो अल्लाह ताला यही बात कहते हैं कि इसका माल आखिर इसके किस काम आएगा। इन्ना अलैना लल्हुदा व इन्ना लना लिलआखिरति वलूला, बेशक रास्ता बताना हमारे ज़िम्मे है, चलना बंदे ने खुद है। इसको अपने बस लिख लें। और दर हकीकत आखरत और दुनिया दोनों के मालिक तो हम ही हैं, यानी अगर दुनिया रब ने दी है तो आखरत भी वही देगा। बस मैंने तुमको खबरदार कर दिया भड़कती हुई आग से, नहीं छुलसेगा इसमें मगर इंतहाई बदकिस्मत शख्स जिसने छुटलाया और मुँह फेरा। और इससे दूर रखा गया वो नहायत परहेजगार जो पाकीज़ा होने की खातिर अपना माल देता है। देखिए, माल तज़किया करता है, कमी बेशियों को दूर करता है। ये जो फितराना है रमज़ान के बाद जो देते हैं, उसमें भी ये हिकमत है कि रोज़े के अंदर जो कमी बेशी हो जाती है उसको अल्लाह ताला से मतलब बंदा दूर करा लेता है। इस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला उसे देना हो, वो तो सिर्फ़ अपने रब बरतर की रज़ा जुई के लिए ये काम करता है, और वो ज़रूर इससे खुश होगा। यानी अल्लाह के लिए माल दिया था तो अल्लाह ज़रूर खुश होगा। आप देखिए, आप किसी इंसान पे थोड़ा सा माल लगाएं, वो खुश होता है? सब खुश होते हैं ना, जिस पे भी लगता है। तो जब आप सच्चे दिल से अल्लाह के रस्तों में देते हैं तो अल्लाह ताला उससे ज़रूर खुश होता है। पूरे यकीन के साथ अल्लाह के रस्ते में बंदा दे, ये ना सोचे पता नहीं अल्लाह ने कबूल भी किया है कि नहीं, और पता नहीं क्या और पता नहीं क्या। शैतान हमारे दिल में महरूमी का एहसास डालता है ताकि बंदा नेकी ना करे। अच्छा, अल्लाह ने खुश तो होना नहीं, तो फिर मैं ये काम करता ही नहीं हूँ। अगली सूरत, सूरत दोहा, 11 आयतें हैं, मक्की सूरत है, 3 टॉपिक हैं। आयत 1-5, नबी सल्लम को तसल्लियाँ दी गई कि रात के बाद जैसे दिन आता है इसी तरह से आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। आयत 6-8 में माजी से शानदार मुस्तकबिल पर इस्तदलाल है, और 9-11 में तहदीस नेमत है कि अल्लाह जो नेमतें देते हैं उसका इजहार करो शुक्राने के तौर पर। और नबी सल्लम को इस सूरत में दावत और तबलीग को जारी रखने की खुशखबरी भी है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला आपका अंजाम बहुत अच्छा करेगा। बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरत है, और आप सीरत जब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो मैं आखिरी जुमला बोलती हूँ कि ये किस दौर की सूरत है, इससे क्या मुराद था। क्योंकि अल्लाह के नबी के दिल दुखा होता था और अल्लाह ताला अपने नबी के ऊपर इतनी खूबसूरत आयतें नाजिल करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलालआखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कसम है रोज़े रोशन की और रात की, जबकि वो सुकून के साथ तारीख हो जाए, ऐ नबी तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ा और ना वो नाराज़ हुआ है। चंद दिन के लिए वही का सिलसिला बंद हुआ तो अल्लाह के नबी उदास रहने लगे। तो अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल नहीं आते थे, आप इतने उदास रहने लगे कि कभी पहाड़ पर चढ़ते और लगता कि खुद को नीचे गिरा लेंगे। उसकी तरफ इशारा है, कहा नहीं, अल्लाह ने नहीं दिया, ये थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन टाइम दे रहा है, रीअसेस कर लो खुद को। और यकीनन तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर है, और अन करीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। आप खुश हैं अपने रब से? दौरे कुरान में कितना को मिला है? आप देखिए, आज मैं बिल्कुल सिर्फ तर्जमे से ऊपर नहीं जा रही, इसके बावजूद भी आप देखिए कि आप सोचें कि हम वक्त पे पूरा कर लें तो बड़ी बात है, तो जब आप इसको अपनी ज़िंदगी के कई महीने दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये तो उनसे पूछिए जिनको मिला हुआ है। और मशवरा करना हो तो उनसे करें जो ये कोर्स कर चुके हैं, जो करते नहीं उनसे मशवरा कभी ना करें। उन्होंने वो चखी नहीं चीज़ तो वो आपको कैसे बताएंगे? अलम यजिद का यतीम मनफा आवा, क्या इसने तुमको यतीम नहीं पाया? देखिए, यतीम बच्चा नबी बन गया, बाप की क्या ज़रूरत है, ये तो अल्लाह पालता बच्चों को। फिर तुमको फिर ठिकाना फराहम किया और तुम्हें नावाकिफ़ राह पाया और फिर हिदायत बख्शी, यानी जिसका कोई नहीं उसका रब है। ववजदका आइलन फ़ाग़ना, और तुम्हें नादार पाया फिर मालदार कर दिया, लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो और साइल को ना छिड़को और अपने रब की नेमत का इजहार करो। कैसे? शो मार कर? नहीं, शुक्राना। सहाबे किराम नेमतों का इजहार कैसे करते थे? कि उसको दूसरों के साथ शेयर करते थे। हमारे आज कल्चर में क्या हो गया, दूसरों को दिखाओ जी, अल्लाह ने दिया है तो अब दिखाएंगे, तो दूसरों को जलाना नहीं चाहिए। पहने खाएं पिएं, घर अच्छा बड़ा बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन दिखावे की नीयत से नहीं, कि नेमत करें कि अल्लाह ने दिया कपड़ा पहन लिया, अल्लाह ने गाड़ी दी उसमें बैठ के आ गए, बस ये है। इस इतना सा काम है जिसको आप तहदीस नेमत कहेंगे। इल्म दिया उसको शेयर करेंगे, सेहत दी वक्त दिया इसको इस्तेमाल करेंगे। सूरत अलम नशरह है, आगे 8 आयतें हैं, मक्की सूरत है, 3 टॉपिक हैं, 1 से 4 शानदार माजी से शानदार मुस्तकबिल पर इस्तदलाल है। आयत नंबर 5 से 6 में इब्तदा में मुखालफत होगी, बाद में फिर आम कबूलियत हासिल हो जाएगी। ये हमेशा ही होता है, शुरू में एक चीज़ नहीं लगती है लोगों को, बाद में फिर सब कबूल कर लेते हैं। आयत 7 से 8 में ताल्लुक बिल्ला और रग़बत इल्लाह के लिए दावत और तबलीग की तरफ है, के साथ साथ इबादत भी करो, और नबी सल्लम को एक अच्छे मुस्तकबिल की खबर है इसमें, यही इसका मेन थीम है। पहले 3 सालों के अंदर किसी दौर में नाजिल हुई थी, और अल्लाह के नबी उदास जब रहते थे तो उसके बाद यह सूरत नाजिल हुई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अनका विसरक अल्लज़ी अनक़ध ज़ख्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्नमल उस्रि युस्रा इन्नमल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़र्ग़ब। ए नबी, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया? दुआ करें अल्लाह हमारे सीने भी खोल दे, शरे सदर हो जाए हर नेकी के काम पे, और तुम पर से वो भारी बोझ उतार दिए जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था, और तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया। जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको काहिन और मजनू का, आज वो आपको दी बेस्ट पर्सन कहते हैं, दी हंड्रेड्स में सबसे ऊपर अल्लाह के नबी का नाम, दुनिया के 100 अजीम लोगों में सबसे ऊपर मोहम्मद सल्लम। तो वो जिक्र खैर बेहतर है जो आपके बाद हो या आपकी ज़िंदगी का। बस हकीकत ये है कि तंगी के साथ फराही है। आप में से हर वो सिस्टर, बहन, जो भाई, जो भी किसी मुश्किल में, आजकल बीमारी में, दुख में, माली परेशानी, औलाद का गम, उनके लिए साथ में आपके लिए बेहतरीन सब्र है, सुकून है। क्या एक नहीं, 2 बार। उलमा कहते हैं अल्लाह एक बार भी कह दे तो बात सही है, लेकिन 2 बार कहे तो वो तो होगा क्या? सुनिएगा, बस हकीकत यह कि तंगी के साथ फराही है, बेशक तंगी के साथ भी फराही है। हालात बदल जाएंगे, आप अल्लाह पे नज़रें लगाएं। करो क्या पस जब तुम फारिग हो तो इबादत की मुशक्क़त में लग जाओ। हम कहते फारिग हो जाओ तो छुट्टी, फ़न, पार्टी, दावत, तो अल्लाह कहते नहीं, अब और इबादत करो, थोड़े से दिन रह गए रमज़ान के, और जम जाओ। या रब्बी का फ़रगब, अपने रब की तरफ रगबत करो, तुम्हें दूसरों को नहीं देखने की ज़रूरत। सच्ची बात है, जिसकी नज़रें रब पर गड़ जाती हैं उसको सब पुतलियाँ लगती हैं, बोने लगते हैं, इंसान नहीं लगते, मिट्टी के मादू लगते हैं, कुछ इकतदार नहीं है उनके पास। अल्लाह करे कि हमारी नज़रें अल्लाह पे लग जाएं। सूरत 3, 8 आयतें हैं, 2 टॉपिक हैं टोटल इसके। आयत नंबर 1 से पहली आयत में 3 का जिक्र है, दूसरी में जैतून, तीसरी में तूरे सीनीन का जिक्र है, चौथी में बलदुल अमीन। ये चारों 4 मज़ाहिब को शो करती हैं, हज़रत ईसा, मूसा, नबी सल्लम का दीन, और बलदुल अमीन में मक्का की बात कर दी गई, यानी तमाम अंबिया की तमाम दावत की बुनियाद पर लोगों को बांटा जा रहा है। आयत 4 में मक्का की कसम खाई गई, आयत 5 में अहसन तकवीम और असफलुस साफिलीन की बात आयत नंबर 6 में, कस्में खाकर 2 आयतों में उसका जवाब दिया गया, اور پھر آیت نمبر 7 میں اللہ کے نبی کی دعوت جزا و سزا برحق ہے، روزے قیامت اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، یہ آیت نمبر 8 پہ ہے، ساری صورت کے ہے کہ آخرت آنے والی ہے، اس کا فکر کرو۔ مکہ کے چوتھے یا پانچویں سال میں یہ نازل ہوئی تھی جب لوگ جھٹلاتے تھے اور اللہ کے نبی کے اوپر آیتوں کی وحی پوری مسلسل ترتیب سے چل رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ والتین والزیتون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی۔ کیا ہے جواب قسم کا؟ اس پہ ذرا کھول کے ہم اپنے آپ کو سوچیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ ہے نا انسان بہترین ساخت، مور خوبصورت ہے کہ انسان، چاند خوبصورت ہے کہ انسان، ساری مخلوقات سے خوبصورت انسان ہے۔ وجہ کہ ساری مخلوقات انسان کو سرو کر رہی ہیں۔ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے والا بنا دے کہ ہماری نیکیاں کبھی ختم نہ ہو ہمارے بعد بھی۔ فما یکذب کا بعد بالدین، پس سے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس بڑائی کا احساس دلا دے۔ اس کے بعد سورۃ علق ہے، ابتدائی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، اس کا ذکر ہے۔ 19 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے۔ 1 سے 5 آیتوں میں اسماء و صفات سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 تک سرکش لوگوں کو پیچھے کرو، دعوت توحید کو دو، ریجیکٹ کرتے ہیں تو کرنے دو۔ آیت 9 سے 14 میں طاغوت جو ہیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور آیت 15 سے 18 میں ایسے برے قائدین کا انجام ہے، اور آیت نمبر 19 میں کرو کیا ایسے طاغوتی نظام سے بچ کے، نماز کے ذریعے اللہ کا قرب لو۔ ساری صورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور دوسری چیزوں سے منہ پھیرنا ہے۔ پہلی آیتیں جو 5 ہیں یہ وحی کے آغاز میں نازل ہوئیں، آج دیکھیے ہم آخری دن میں وہ وحی پڑھ رہے ہیں جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ میں بدلا تھا۔ یہ اللہ کی بانٹ ہے، اس نے ترتیب جیسے بنائی اس میں حکمت ہے۔ اور آخری 14 آیتیں جو ہیں یہ مکہ میں اعلان عام کے بعد 4 یا 5 نبوی میں نازل ہوئیں۔ ابو جہل کا ذکر ہے ان آیتوں میں، دیکھیے اللہ نے نام تو نہیں لیا اس کا، لیکن اس کی حرکتیں قیامت تک کے لیے اس کے لیے برا صدقہ جاریہ بن گئیں۔ جو لوگ بھی اس کو سمجھ کے پڑھیں گے وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم ابو جہل کے راستوں پہ نہیں لگے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچائے ایسے راستوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، پہلی وحی میں امبریولوجی پڑھائی جا رہی ہے، سائنس کی اہمیت دیکھیے اسے۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ قلم کی اہمیت، ہاتھوں میں قلم لے، پین پکڑا ہوتا ہے، انسان کا دماغ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ کل ان الانسان لیطغى، یہ ہے ابو جہل کے بارے میں، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، اس بنا پر وہ کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بہت کچھ دے دیا، اس کو اللہ کی اب ضرورت نہیں۔ حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا، تو ابو جہل آ کر اوپر اجڑی رکھ دیتا تھا۔ کون سا بندہ جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو چھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو بھی اللہ کے نام پر نبی کو ستاتے تھے ان سب کو کہا گیا، ہرگز نہیں، اگر وہ پاس نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، آج لوگ کہتے ہیں عزت کا مسئلہ ہے، اللہ کہتے ہیں اسی بالوں سے پکڑیں گے ہم تمہیں قیامت کے دن اگر تم نے ہمیں ناراض کیا۔ کرو کہ افل ید انا دیا، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ تلاوت سنیں گے ہم یہاں، لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایک چیز پہ غور کیجیے گا کہ اللہ کا قرب کس چیز سے ملتا ہے؟ دھمال ڈالنے سے، لڈی ڈالنے سے، قوالیاں کرنے سے، یا وٹ ایور، سجدوں میں ملتا ہے. تو جب کبھی کچھ لینا ہونا تو اللہ کے آگے ماتھا ٹیک دیں, تلاوت سنتے ہیں ان آیتوں کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى, ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية, ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديا, سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.